यशोद
धन्यवाद शब्दार्थ। सा वह राजा रंती देव वह निसंदेह तेभ्य ब्रह्मा जी शिवजी इत्यादि अन्य देवताओं को नमः कृत्या नमस्कार करके निसंगः निष्काम विगत स्प्रेहा किसी प्रकार की भौतिक संपत्ति की इच्छा ना करते हुए वासुदेवे वासुदेव में भगवती भगवान भक्त्या भक्ति के द्वारा चक्रे स्थिर किया मनः मन को परम परम चरण लक्ष्य के रूप में। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। राजा रंतिदेव को देवताओं से किसी प्रकार का भौतिक लाभ प्राप्त करने की कोई आकांक्षा नहीं थी। उसने उन्हें प्रणाम किया किंतु भगवान विष्णु अर्थात पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव में अनुरक्त होने के कारण उसने अपने मन को भगवान विष्णु के चरण कमलों में स्थिर कर दिया। इससे पहले 13, 14, 15 का अनुवाद इस प्रकार है, उसमें तात्पर्य नहीं है, इसलिए हम उसको अनुवाद को पढ़ेंगे। जीवन के लिए संघर्ष करते हुए बेचारे चंडाल की जान बचाने के लिए अपना जल देकर मैं सारी भूख प्यास थकान शरीर कंपन खिन्नता क्लेश संताप तथा मोह से मुक्त हो गया हूं। इस तरह कहकर प्यास के मारे मरते हुए राजा रंतिदेव ने बिना किसी हिचक के अपने हिस्से का जल चंडाल को दे दिया, क्योंकि राजा स्वभाव से अत्यंत दयालु और गंभीर था। तत्पश्चात लोगों को इच्छित फल देकर उनकी सारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाले ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे देवताओं ने राजा रंतिदेव के समक्ष अपना स्वरूप प्रकट किया, क्योंकि वे ही ब्राह्मण शूद्र चंडाल इत्यादि के रूप में वहां उनके पास आए थे। राजा रंतिदेव को देवताओं से किसी प्रकार का भौतिक लाभ प्राप्त करने की कोई आकांक्षा नहीं थी। उसने उन्हें प्रणाम किया किंतु भगवान विष्णु अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव में अनुरक्त होने के कारण उसने अपने मन को भगवान विष्णु के चरण कमलों में स्थिर कर दिया। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का गीत है, अन्य देवाश्रय नाही तुम्हारे कहीं नु भाई ऐ भक्ति परम करण। यदि कोई भगवान के का शुद्ध भक्त बनना चाहता है तो उसे देवताओं से किसी वर की लालसा नहीं रखनी चाहिए। जैसा कि भगवद गीता 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया, कामस्ते प्रतिज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। माया के मोह से मूर्ख बने लोग भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। इसलिए यद्यपि रंतिदेव ब्रह्मा जी तथा शिव जी का साक्षात दर्शन कर रहे थे, किंतु उन्हें उनसे किसी भौतिक लाभ की लालसा नहीं थी। बजाय इसके उन्होंने अपने मन को भगवान वासुदेव में स्थिर कर दिया और उनकी भक्ति की। यह उस शुद्ध भक्त का लक्षण है जिसका हृदय भौतिक इच्छाओं से कलुषित नहीं होता। अन्य विलास शता शून्यम ज्ञान कर्मा नाविदा अनुकूल न कृष्ण अनुशील न भक्ति उत्तमा। मनुष्य को सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन के द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा किए बिना भगवान कृष्ण के अनुकूल दिव्य सेवा करनी चाहिए, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। हरे कृष्ण। तो भक्तों के लिए बड़ा ही सुंदर विषय चल रहा है, इंटरेस्टिंग रोचक कथा रंतिदेव महाराज की, जिसमें 48 दिन तक व्रत रखने के बाद अब जब खाने पीने की बारी आई तो बना भी फीस रखा था देसी घी में, और जैसे उसका सेवन करने लगे तो वहां पर कभी ब्राह्मण कभी शूद्र कभी चांडाल प्यासे ये पहुंच गए और उन्होंने मांगा कि हमें भी दीजिए, हम तो मरने के कगार पे, हम भी भूखे कई दिनों से। और रंतिदेव जी ने क्या किया, कभी आधा भाग दिया फिर वो दिया, कभी आधा भाग दे दिया, फिर जो पानी बचा था तो आखिरी में पानी भी दे दिया उस चिंडाल को, और जिस प्रकार दिया तो क्या उनकी चेतना है, ये देते हुए उनकी चेतना है, वो कह रहे हैं कि जीवन के लिए संघर्ष करते हुए बेचारे चंडाल की जान बचाने के लिए अपना जल देकर मैं सारी भूख प्यास थकान शरीर कंपन खिन्नता क्लेश संताप तथा मोह से मुक्त हो गया हूं। इमिजिएटली वो जल का दान करते हुए उनको ये अनुभूति हो गई, ये सारी क्वालिटीज भी आ गई तुरंत। और कह रहे हैं कि इस तरह कहकर प्यास के मारे मरते हुए राजा रंती देव ने बिना किसी हिचक के अपने हिस्से का जल चंडाल को दे दिया, क्योंकि राजा स्वभाव से अत्यंत दयालु और गंभीर था। तो कुछ क्वालिटीज बता रहे हैं कि दयालु भी थे गंभीर भी थे स्वभाव से ही। अब जो है तत्पश्चात लोगों को इच्छित फल देकर उनकी सारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाले ब्रह्मा जी शिव जी जैसे देवताओं ने राजा रंतीदेव के समक्ष अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। यही चंडाल और शूद्र और ब्राह्मण के रूप में आए भिखारियों ने अब अपना असली रूप दिखाया, और अपना असली रूप दिखाकर देखा तो अरे ये तो ब्रह्मा जी हैं, शिव जी, अन्य देवता भी पहुंचे हैं सामने। तो जैसे उनके समक्ष आए तो क्या कहा, राजा रंतीदेव को देवताओं ने से किसी प्रकार का भौतिक लाभ प्राप्त करने की अब कोई इच्छा नहीं थी, कोई आकांक्षा ही नहीं थी। उन्होंने कहा जब मैं ये तक त्याग सकता हूँ जल भोजन जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो भला आपके वरदान मुझे क्या करेंगे। तुम देख सकते हैं कि जब कभी कोई व्यक्ति इस प्रकार की भारी तपस्या करता है तो निश्चित रूप से उसके पास क्या आते हैं एग्जाम, ऐसे एग्जामिनेशन भी आते हैं, उसको एग्जाम भी होता है। और लेने वाले कौन है एग्जाम, स्वयं देवी देवता इत्यादि ले रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं इस पूरे प्रसंग में बड़ा कुछ सीखने को है, और विशेषकर एक शुद्ध भक्त के लिए जो शुद्ध भक्ति का प्रयास कर रहा है तो रंतीदेव उनके लिए एक बहुत बड़े साधक के लिए भी क्या है, एक आइडियल है। क्यों, क्योंकि रंतीदेव जी अपने जीवन से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार उनकी भक्ति का स्तर इतना ऊंचा था कि 48 दिन भूखे प्यासे रहने के बावजूद जब व्रत खोलने की बारी आई तो उस समय उनकी जो परीक्षा लेने आ गए ब्राह्मण वो शूद्र और चंडाल, तो उन्होंने बिल्कुल हिचक नहीं दिखाई किसी तरह की। हम बहुत सोच विचार करते हैं, मान लीजिए कुछ अपनी पूरी आय का कोई 1% भी देना हो तो उसको भी सोचते हैं कि कहाँ दें कितना दें किधर दें, पंखा लगवाएं तो नाम लिखवाएं उस पर, बोर्ड बनवाएं तो फोटो लगाएं उस पर, मतलब जीवन जमीन आसमान का अंतर है रंतीदेव की चेतना में और आजकल के लोगों की चेतना में, सोच भी नहीं सकते। और इतना चिंतन मनन करते हैं देने से पहले कि पूछ ही नहीं। इनके पास तो फिर भी ऐसी परिस्थिति थी कि सामने लोग आ गए, अगर किसी को लगे कि हाँ मेरा फास्ट है कल को कोई आ ना जाए तो दरवाजे बंद करके खाएगा वो, अगर दरवाजे पे लिखा भी होगा कुत्तों से सावधान और गार्ड रखे होंगे उसने कहीं कोई डिस्टर्ब करने ना आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ा है कि जब कोई गृहस्थ को भोजन करना चाहिए तो उससे पहले उसको 3 बार बाहर जाकर आवाज लगानी चाहिए। क्या आवाज लगानी चाहिए, कि कोई भूखा है तो आ जाओ प्रसाद खा लो, कोई भूखा है आ जाओ प्रसाद खा लो, जोर से चला गया, कोई भूखा है तो आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए। समय बीतता गया तो लोगों ने आवाज धीरे कर दी, कोई भूखा है तो आ जाओ, कोई सुन ही ना पाए। और अब ऐसी परिस्थिति है बाहर निकल के बोलता है किसी के घर में कुछ और एक्स्ट्रा बना है तो दे जाओ, ऊपर आवाजें मारते हैं भाभी जी क्या बनाया है, वो भी ले आओ ये भी ले आओ, तो एकदम परिस्थितियां उल्टी हैं। तो वो जो धर्म था उस धर्म का धीरे धीरे इतना बुरी तरह से पतन हुआ कि वो संस्कार वो रीति रिवाज जो हमारी भक्ति में धर्म का पालन करते हुए भक्ति में आगे बढ़ने के जो कुछ कारण थे वो भी लुप्त हो गए। अब जगह धर्म की जगह अधर्म ने ले ली, अब तो हम ये देखते हैं कि कौन कितना कम अधर्म कर रहा है। अब क्या है, अधर्म तो सभी कर रहे हैं, अब किस तरह से पकड़ा देखा जाता है व्यक्ति का चरित्र कि कौन कितना कम अधर्म कर रहा है। वो व्यक्ति 100% बदमाश है, वो 90 है, वो 80 है, वो 70 है, तो नहीं इतना नहीं करूंगा, इतना इतना करूंगा। अधर्म करना है, अधर्म कर रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिग्री थोड़ी कम है, तो धर्म का पालन तो बहुत मुश्किल, वो तो रीति रिवाज तो खत्म हो गए, लुप्त हो गए। तो समय बीतता जा रहा है और धर्म लुप्त होता जा रहा है, इसलिए इसी के भागवतम ही 12वें स्कंद में कहा गया, ततश्च अनुदिनम धर्मम सत्यम शौचम क्षमा दया काले न बलि न राजन न क्षति आयु बलम स्मृति। इतने सुंदर सुंदर गुण थे जो लोग धर्म का पालन करके अर्जित करते थे। कह रहे हैं सत्यम शौचम क्षमा दया, ये जो धर्म के स्तंभ हैं इनका पतन होने लगेगा। कब कैसे, ततश्च अनुदिनम धर्म, जैसे ही कलयुग आ जाएगा तो दिन ब दिन रिलीजियस प्रिंसिपल्स गिरने लगेंगे। जैसे गोवर्धन तिल तिल नीचे जा रहा है, वैसे ही धर्म जो है रोज डे बाय डे खत लुप्त होता जाएगा, अधर्म बढ़ता जाएगा। वैसे भी बताते हैं कि बहुत से गुण जो चार स्तंभ उसमें से तीन तो पहले ही खत्म हो चुके हैं, सत्य बचा था, अब उसकी बहुत बुरी हालत है। और दिन ब दिन धर्म खत्म होता जा रहा है। सत्यम शौचम क्षमा दया, सत्य नहीं बोलेंगे लोग, पवित्रता नहीं रहेगी, ना बाहरी ना आंतरिक, दूषित रहेंगे लोग, मतलब स्वभाव बन जाएगा। चार नियम तोड़ना ये स्वभाव का एक अंग बन जाएगा। क्या, झूठ बोलना, जुआ खेलना, ये स्वभाव है, ये बिजनेस है लोगों का, इसी से पैसे बनते हैं आजकल। अब लोग बोलते भाई जी क्या करें, करना तो पड़ेगा, रहना तो है ही, जीना तो है ही, इसलिए करना पड़ता है। स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपको करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ब्राइब लेनी पड़ेगी, आप नहीं लोगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो झूठ भी चलेगा, मांसाहार की इतनी तगड़ी वैरायटीज है मार्केट में, उस मांस से क्या क्या नहीं बनाया जा रहा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें है कि नहीं। आजकल तो स्पेशली ग्रीन टैग भी लगाते हैं उसमें, बट बाद में पता चलता नहीं इसमें भी था। तो मांस भक्षण के लिए जो इतनी भारी संख्या में, ये जो धरती है भारत देश, भारत देश हमारा, जहां पर गो ब्रह्मण हिताय च, इनके हित के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, जो इनका हित करते हैं कृष्ण, सारे अवतार यहीं होते हैं, किनके हितों के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए और गायों के। इनको बहुत प्रेम है भगवान को इनसे। ब्राह्मणों से क्यों प्रेम है, क्योंकि ब्राह्मणों की वजह से ही धर्म बचा हुआ है, वो धर्म का पालन करेंगे, धर्म की शिक्षा देंगे, तो कुछ लोग इस संसार से मेरी तरफ आएंगे, तो इसलिए भगवान को वो प्रीचर ब्राह्मण बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी रक्षा करते रहते हैं। और ब्राह्मण शुद्ध क्यों रहेंगे, क्योंकि गायें इतनी पवित्र है, गायें उसका दूध, उसका दही, उसका सारी चीजें जो हैं वो हमारे ब्रेन टिश्यूज को प्यूरिफाई करती है, ताकि व्यक्ति मोक्ष की तरफ उन्मुख हो, इसलिए गायें भी बहुत पसंद है भगवान को, क्योंकि यही दोनों जो हैं इस धरती पर लोगों की मदद कर रहे हैं उस बुरी स्थिति से ऊपर उठने के लिए, इसलिए भगवान को प्रिय है, इसलिए इनकी रक्षा करते हैं, गो ब्रह्मण हिताय च। और जहां से ये सब कुछ था, जहां पर सारे अवतार लिए, सबसे बुरी स्थिति इन दोनों की यहीं पर है। ब्राह्मण ढूंढने को नहीं मिलते, देखने को नहीं मिलते, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, अभी तो सारे स्मार्थ मिलेंगे, कर्मकांडी मिलेंगे, जो खुद भी विषयों में लगे हुए हैं और दूसरों को और विषय में लगाने के लिए कर्मकांड बताते हैं। लोग आते हैं ना ब्राह्मणों के पास, क्या बोलते हैं कि सर बताओ ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे कर सकते हैं, अब मुझे बताओ बिजनेस कैसे चलेगा, पैसा कैसे लगेगा, ये कैसे हो जाएगा। तो क्या किस लिए आए उनके पास, भोग के लिए। और ब्राह्मण उसको भोग के तरीके बताता है, सुबह दाल डाल दियो, यहाँ बाजरा डाल दियो, यहाँ ये कर दियो, यहाँ वो कर दियो, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, और मेरी फीस दे दे ताकि मैं भी भोग कर सकूं। तो ये हालत है ब्राह्मणों की। ब्रह्म जानाति इति, ब्राह्मण है ही नहीं। ब्रह्म को जानने वाला, आत्म को जानने वाला, भगवान को जानने वाला ब्राह्मण नहीं बचा। और छुआछूत और ये सब कर कर तो इतना बुरा हालत कर दिया कि अब एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत रेयरली कुछ बचे हुए, कुछ तो उनकी वजह से चल रहा है पृथ्वी। और शिक्षा किसी के पास है नहीं, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लोग सेंक्शन कर देते हैं, यस नो प्रॉब्लम, गायें जो हैं इस देश में व्यर्थ ही बोझ बढ़ा रही है पृथ्वी का, तो क्या करिए इसको। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो गवर्नमेंट सेंक्शन करती है, यस इतने स्लॉटर हाउसेस और खोल सकते हो, इतनी भारी संख्या में स्लॉटर हाउसेस खुलेंगे तो क्या कटेगा उसमें, गायें कटेगी। बहुत बड़ा बिजनेस है, रेवेन्यू है। और भारत जहां पर गाय की सबसे ज्यादा पूजा होती है, गाय को मां माना जाता है, यह भारत देश पूरे संसार में नंबर वन बीफ एक्सपोर्टर, गाय का मांस एक्सपोर्ट करने वाला नंबर वन, नंबर एक देश। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि धर्म धीरे धीरे कम होगा, यहां तो लग रहा है जैसे खत्म ही हो गया भारत में, तो इन इन विशेष अंगों में नंबर एक। नहीं 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 नहीं, फिर पता चल लाइसेंस से कटेगा, लाइसेंस आपको लगा हो लाइसेंस, तो लाइसेंस ले लो ना, लाइसेंस ले लो, ठीक है लाइसेंस लेके काट लेंगे। और फिर यही बीफ, इसी मांसाहार को लोग बहुत आसानी से चाव से खा रहे हैं, हर चीज में मिल रहा है, हर व्यक्ति खा रहा है। और स्कूल्स में या कहीं पर हमें धर्म की शिक्षा नहीं दी गई, घरों में शिक्षा नहीं दी गई, तो इसलिए बच्चे बोलते हैं व्हाट इज बैड इन दैट, मतलब क्या है, ये भी भोजन है, ये भी भोजन है, ये भी खाना है, वो भी खाना है, इसका खा लो बेटा, उसका ना खाना, ये क्या मम्मी, ये खा सकते वो नहीं खा सकते, हम तो दोनों खाएंगे, हर चीज में भी। एक दिन ऐसा आएगा कि बाहर एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर ही इतने कंजप्शन हो जाएगी, यहीं पर इतना ज्यादा खाया जाएगा कि हाया ना। अभी एक सर्वे किया गया ये देखने के लिए कि भारत में कितने वेजिटेरियन हैं। पहले तो 100% ही हुआ करते थे, और अभी क्या परसेंटेज है मालूम है, 33-35% वेजिटेरियन बचे हैं इस देश में। अब ये 35% है, ये परसेंटेज जो दे तो दिया है, लेकिन जो सर्वे करने वाले हैं वो कैसा वैष्णव था क्या, ना 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 ना, सर्वे करने वाले तो ये देख रहे थे, हाँ जी मीट खाते हो, नहीं जी नहीं, चलो जी लिखो उसको, सर मैं वेजिटेरियन अंडा खाता हूं और प्याज लहसुन को भी नहीं माना जाता उसमें। तो इस प्रकार जो बेचारा 35% निकला भी है परसेंटेज, वो भी कह सकते हैं पता नहीं कितना अच्छा है कितना ठीक है। तो कल को यहीं पर सारा कंजप्शन हो जाएगा। तो मांस भक्षण करके लोग अपनी चेतना को दूषित कर रहे हैं, धर्म दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। जो रोज मांस खाएंगे, जिनके हृदय में दया नहीं है, अरे कैसे तुम किसी को काट कर, जला कर, सड़ा कर, रोस्ट कर कर अपने पेट में डाल सकते हो। ये लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, जब इन लोगों के घर का कोई व्यक्ति खींच कर ले जाए और उसकी गर्दन काट दे कोई, बड़े सेंसिटिव होते हैं, सोशल मीडिया पर चले जाते हैं, हमें जस्टिस चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए, क्यों क्या हो गया जी, इसने हमारे बच्चे की उंगली काट दी, इसने छोटे बच्चे के साथ रेप कर दिया, इसने हमारे परिवार के एक व्यक्ति को खींच कर ले गए, इस पुलिस वाले ने हमारे पति को थप्पड़ मार दिया, हमें जस्टिस चाहिए। थप्पड़ कैसे मार सकता है, लॉ में तो नहीं लिखा है। अच्छा तू काट के खा ले, तू फ्राई करके खा ले किसी दूसरे के घर का बच्चा, वहां तुझे लगता प्राण नहीं है, इधर इधर जो मर्जी डाल। और कोई तुम्हारे यहां से खींच के किसी को ले जाए तो तुम सबसे ज्यादा क्या हो गए, सेंसिटिव हो गए। अरे देखिए शास्त्रों में लिखा है अनुमंता मतलब अनुमति देने वाला ये सैंक्शन करते ना, सर चलो काट लो इतना, स्लॉटर हाउस बना दो। चौप हड़ता जो काटता है, क्रय विक्रय जो बेचता है, जो पकाता है, जो सर्व करता है और जो खाता है, ये सब के सब एक जीव के मरने पर इन सब में बटता है उसका पाप। उन सब लोगों में एक जीव के मरने का पाप इन सब में बटता है और ये सब उसका इंतजार करते हैं ऊपर। आओ तो सही, एक बार इन्हीं दांतों से खाएंगे आपको चबा चबा के। इस प्रकार मांस भक्षण से दूषित हो रही चेतना लोगों की, और इतने ज्यादा उग्र हो जाते हैं लोग, इतने ज्यादा पैशनेट होते हैं ये लोग जो इस तरह का भक्षण करते हैं, तो हम सोच नहीं सकते कि समाज में क्या होगा, शांति आएगी। अज्ञानता में रहते हैं और अशांत रहते हैं और छोटी छोटी बात पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं। आप चले जाइए गाड़ी लेके जरा समाज में, आप लोग तो जाते ही होंगे, कितनी बुरी तरह से लोग जो है एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं छोटी छोटी बात पर। हॉर्न बजा दिया बस पीछे से, एक बार बजा दिया, दो बार बजा दिया, व्यक्ति बाहर निकल आया, अंदर जो व्यक्ति बैठा था उसके कान पे ठा मार दी गोली, हॉर्न बजा रहा है, खत्म। क्योंकि नहीं रहेगा सेंसिटिव व्यक्ति, कैसे रह सकता व्यक्ति सेंसिटिव, कैसे रह सकते उसके हृदय में दया, जब दया रही नहीं तो दया का स्तंभ खत्म कर दिया। नशा पी के भी लोग नशे में हैं और बिना पिए भी नशे में है। मतलब पी कर तो फिर भी व्यक्ति चल गिर जाएगा, लेट जाएगा, सो जाएगा, मान लीजिए ज्यादा पीकर, लेकिन जो बिना पिए अज्ञानता में, उनकी तो बहुत बुरी स्थिति है। सारे के सारे पाप करने के ऑर्डर वो दे रहे हैं, सब चीज वही कर रहे हैं। और फिर अवैध संबंध, ये तो रीत बन गई, ये तो इतनी तेजी से बढ़ रहा है इस समाज में कि इस पे तो डिस्कस करना भी शर्म आती है। अब तो बात कर नहीं सकते इन चीजों पे। तो मुझे किसी ने बताया कि ऑफिस में हर व्यक्ति के संबंध है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। बच्चे छोटे छोटे स्कूल में हैं, छोटी उम्र से ही वो हर प्रकार के बुरे कार्य करने लगे हैं, सब जानते हैं, सबको पता है। तो ततश्च अनुदिनम धर्मम, कलयुग के आते ही धर्म धीरे धीरे क्षीण होने लग जाएगा। अभी तो 5000 साल बीते हैं, 432,000 तक चलना है इसको। और अभी 5000 साल बीते हैं, ऐसा लग रहा कि आई गया कलयुग पूरी तरह से। और फिर सत्य नहीं बोलेंगे, पवित्रता नहीं रहेगी, दया नहीं रहेगी, और फिर ये भी कहा कि लोगों की फिजिकल स्ट्रेंथ खत्म होती जाएगी, पूरा जीवन दवाइयों पे चलेगा। बलम और स्मृति, बल नहीं रहेगा, स्मृति नहीं रहेगी, आयु खत्म हो जाएगी, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये है कारण अधर्म का, हर चीज अधर्म की वजह से ऐसे बढ़ रही। और फिर रंती देव महाराज जी यहां पे दिखा रहे हैं क्या कि उनके अंदर गंभीर थे, वो सब क्वालिटीज पहले से थी, और जैसे ही परिस्थिति आई, आप सोच सकते हैं उनके ज्ञान का स्तर, मन पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, आप सोच कर देखिए। जब हमारे साथ घर में कोई घटना होती है, जब हम लोग किसी भी चीज के लिए प्रवोक हो जाते हैं छोटी सी बात पर, क्या ऐसी स्थिति होती है हमारी? क्या हम तो एकादशी रखें और जब व्रत खोलने की बारी आए तो सबसे पहले लाइन में हम ही बैठे होते हैं, है कि नहीं? ये 48 दिन भूखे प्यासे रहकर, और जब व्रत खोलने की बारी आई तो तब ये लोग पहुंच गए, हमें ये दीजिए, हमें वो दीजिए। ज्ञान है कि अगर कोई हाथ फैलाएगा तो मुझे उसे देना है, मेरे दर पर कोई भूखा आएगा तो मुझे उसे देना है। धर्म नहीं भूले, 48 दिन भूखे प्यासे रहे तो धर्म नहीं भूले अपना। हम एक दिन भूखे प्यासे रहें तो सब भूल जाते हैं। इंद्र तृप्ति के साधन हमारे सामने आए तो सब भूल जाते हैं। वो काम जो हम करना नहीं चाहते लोगों के सामने और ऐसी परिस्थितियां आ जाए तो तुरंत कर देते हैं। रजोगुण, मोड ऑफ पैशन। रंती देव के पास ऐसी परिस्थिति आई है कि 48 दिन के बाद वो अब भोजन करने लगे तो पहुंच गए, जल तक ले लिया गया। और जैसे ही उन्होंने सब कुछ दिया और ये कहते हैं कि मेरे को भूख प्यास ये सब खत्म हो गया, भक्त है ना, भगवान का अच्छा भक्त है तो सारा स्तर अच्छा है। ऐसी परिस्थिति में भी अब देवता लोग समक्ष आ गए, हम तुमसे प्रसन्न हुए, 48 दिन का फास्ट रखा आपने, मांगिए क्या चाहिए? ना, कुछ नहीं मांगा कि जो आपने खाया वापस दे दो या कुछ और मुझे पकवान दे दो, नहीं, या ऐसा दे दो वैसा, कुछ नहीं मांगा। क्या आकांक्षा करी? कि मुझे भगवान विष्णु के चरण कमलों की भक्ति दीजिए, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ऐसी मानसिकता किसकी होती है? एक दिन में बनती है। ये जो स्टोरीज हैं, ये जो पास्ट टाइम्स हैं, इनको पढ़कर, इनको सुनकर हम जैसे भक्त लोग जब सुनते हैं तो लगता है ये क्वालिटी जो है ना बहुत अच्छी है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ओके, तो हमारे अंदर भी होनी चाहिए, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं अभी। फिर दूसरी क्वालिटी सुनते हैं तो लगता हाँ होनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं है। कम से कम इन ग्रंथों को पढ़कर, इन स्टोरीज को सुनकर तब पता चलता कि वास्तविक व्यवहार एक भक्त का कैसा होता है, हमें कैसा बनना है और अभी हमारी क्या परिस्थिति है, कितने उद्वेगित हैं, कितने पैशनेट हैं, कितनी जल्दी हम लोग चिंतित हो जाते हैं, इनसिक्योर रहते हैं फ्यूचर को लेकर, ओहो क्या होगा, कैसे होगा। हमारे साथ तो जितने सारे टेस्ट होते हैं, है कि नहीं, लोगों को लेकर हमारे भी तो टेस्ट होते हैं। रंती देव जी का हो गया तो क्या, हमारे भी तो होते हैं टेस्ट। लेकिन उनके अंदर से जो हमारे टेस्ट लेते हैं ना, कोई आती नहीं, कोई दुर्गा कोई सरस्वती बाहर निकल के नहीं आती। बहू कहती है मेरी सास लेती है मेरे बड़े सारे टेस्ट, लेकिन वो निकल के उसके अंदर से कोई आता नहीं है बाहर। तो ये परिस्थितियां सबके सामने आती है, रोज आती है, हर तरह से आती है। लेकिन जो ज्ञान में स्थित है, जो भगवान का भक्त है, जिसके इतने सदगुण है, जिस जो भरा हुआ है, वो आसानी से ऐसी चीजों पे काबू कर लेता है। और यहां पर काबू करने के लिए उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया कि क्या करूं सोचूं कहीं, नहीं 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 नहीं, पूर्णतः ज्ञान में स्थित थे, इसलिए एकदम क्रिया कर डाली कि यस, ये धर्म के अनुकूल है, मुझे इनको देना चाहिए। तो क्या ये एकदम होता है? जी नहीं। हम भी सोच सकते हैं कि कल को हमारे अंदर भी ऐसे गुण हो। जो 50 क्वालिटीज एक व्यक्ति के अंदर होती हैं, उन 50 क्वालिटीज के आंशिक मात्रा में हर एक के अंदर होता है, डेवलप नहीं होती ज्यादा। उनको डेवलप करना, इसका मतलब व्यक्ति अच्छे भगवान का भक्त बनने का प्रयास कर रहा है। जब सारी डेवलप हो जाएंगी तो हर व्यक्ति हर चीज में निपुण हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, भगवान के पवित्र नामों को जप करते हैं। भगवान के पवित्र नामों को जप करते 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 इस हरि नाम के, जो कि संवित शक्ति का विस्तार है, इसमें ज्ञान है। हरि नाम लेते लेते हमारे हृदय में ज्ञान उदित हो जाता है और धीरे धीरे वो सारी क्वालिटीज, वो सारे गुण एक व्यक्ति के अंदर आने शुरू हो जाते हैं, डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अच्छे मार्गदर्शन में रहकर वो सारी क्वालिटीज आने लग जाती हैं। सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ऐसी बुद्धि तैयार हो जाती है सही समय पर डिसीजन लेने का। कृष्ण एक शरणम, क्योंकि उसने एकमात्र कृष्ण की शरण ले ली है तो बाकी क्वालिटीज अपने आप आ जाएंगे। और कृष्ण की शरण हरिनाम के द्वारा, उनके ग्रंथों के द्वारा, कथाओं के द्वारा। हर व्यक्ति आगे हो सकता है, कोई थोड़ा और आगे हो सकता है, कोई बहुत आगे हो सकता है क्वालिटीज के मामले में। लेकिन जब हम लोग निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं, कई बार स्वार्थ भी देखा जाता है कि ये चाहिए वो चाहिए, लोग तो भी करते हैं, तो ये हमें सुकृतियां और हमें बहुत से पुण्य कर्म देता है। इस प्रकार की भक्ति इच्छाओं के साथ की जाने वाली। तो ये हमारी कहीं ना कहीं बाद में आगे जाके योग्यता बनाता है, इतने सारे पुण्य आते हैं, इतनी सारी चीजें आती हैं। तो हम देख सकते हैं कि कई लोग हो सकता है एक जीवन में बड़ा कुछ ना कर पाए हों, बहुत कामी था, क्रोधी था, लेकिन माला कर लेता था, चला गया। बहुत लोभी था, धनी, धन के पीछे बहुत वो था, एक दो ऐप भी थे, एक आधा नियम नहीं पालन करता था, अब मरा गया लेकिन माला करता था। तो जो लोग इस प्रकार के भ्रष्ट योगी हैं, ये अन्न को फिर से चांस मिलता है, फिर से मनुष्य जीवन में आते हैं। और फिर भगवान कहते हैं नामे भक्ते प्रणश्यति, उसका उसकी भक्ति का, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो जैसे ही वो जन्म लेता किसी दूसरे परिवार में, तो अब उसके पास फिर से मौका है, जो कर आया, जितना कर आया, वहां से फिर से आगे बढ़ता है। इसलिए हम देखते हैं भक्ति में जुड़ने वाले के बिल्कुल छोटे शिशु हैं जो भक्तों के घर परिवार में जन्म लिए हैं, कुछ भक्तों के परिवार में जन्म नहीं लिए लेकिन माता पिता लग गए तो फिर बच्चे भी लग गए, कुछ लोग वृद्धावस्था में भक्ति में लगते हैं, अलग अलग समय पर भक्ति में लग रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका? ऐसा नहीं कि भगवद गीता अवेलेबल नहीं थी मार्केट में इसलिए व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाया, नहीं, वो तो इतनी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, हो रही हैं कि हर एक के पास इजीली अवेलेबल है, लेकिन खोला नहीं। एक ने खोल लिया, एक ने पढ़ लिया, एक ने पूछ लिया आगे चल के उसमें, तो हर एक की स्थिति अलग है। इस प्रकार अपने द्वारा की जाने वाली भक्ति अगर कोई नहीं भी पूरी कर पा रहा तो उसको फिर से चांस मिलता है, और ऐसे चांसेस मिलते हैं तो वो सदगुण उसके अंदर बढ़ते जाते हैं। और एक दिन ऐसी परिस्थिति आती है जब वो ऐसे रंती देव जैसे स्तर पर पहुंच जाता है, पहुंचेगा, भक्तों के गुण है। लेकिन प्रयास ही करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे युग बदलता जाएगा, युग बढ़ता जाएगा, परिस्थितियां और विकट होती जाएंगी, विराट विकराल होती जाएंगी, भक्ति करना और मुश्किल होता जाएगा। इसलिए अभी सही समय है। भक्ति करते करते जब भक्तों का स्तर अच्छा बढ़ता है तो शारीरिक जो हमारी नीड्स हैं वो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। हो सकता है बाहर का व्यक्ति बोलो देखो दिन में एक बार खाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो कहते एक भी क्यों खाता हूं, एक बार भी खो, इतना टाइम में भजन में लगाता ना। रूप गोस्वामी जी, रघुनाथ गोस्वामी जी, तीन दिन में एक बार 100 ग्राम मट्ठा पीते थे छाछ। तो क्या हुआ भाई, तीन दिन में एक बार खाली, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, कुछ नहीं, केवल मट्ठा। तो क्या उनको फील नहीं होता था क्या भूख प्यास इत्यादि? जी नहीं, क्योंकि व्यक्ति जो आत्मा के स्तर पर, शरीर और आत्मा जब एक हो जाते हैं, अभी हमारा शरीर और आत्मा अलग अलग है, हम लोग हर चीज अपने को शरीर मान के करते हैं, इसलिए इसकी भूख, इसकी इच्छाएं पूरा करने में लगे रहते हैं। लेकिन जिन भक्तों का जीवन रियलाइज्ड है, अब आत्म साक्षात्कार जिन्हें हो गया, तो वो आत्मा के स्तर पर शरीर को ले आते हैं, मतलब आत्मा की जो क्वालिटीज हैं वो शरीर की क्वालिटीज बन जाती हैं और उस आधार पर जीवन जीते हैं। जैसे आत्मा की क्या क्वालिटीज हैं, वो इस संसार में किसी से लिप्त नहीं होता, उसकी किसी से अटैचमेंट नहीं होती, वो इस संसार के भोगों के प्रति कोई आकर्षण नहीं। आत्मा का क्या आकर्षण है? आत्मा तो सत चित और आनंद है। तो जब हमारी आत्मा और शरीर एक हो जाते हैं, अर्थात वो क्वालिटी जो आत्मा की है वो मनुष्य की बन जाती है, शरीर की भी हो जाती है, तो फिर वो इस संसार में लिप्त नहीं होता किसी चीज से। चीजें हो रही होंगी, घटनाएं घट रही होंगी, फिर नहीं। तो उसी तरह जब भूख और प्यास और ये संत और ये जो चीजें बताई हैं, ये उसको लगती हैं, उसको परेशान करती हैं जो देहात्म बुद्धि में है। जितनी भी हम समस्याएं फेस कर रहे हैं अपने कर्मों के हिसाब से, पापों के हिसाब से, अपराधों के हिसाब से, पूर्व जन्म में किए हुए समस्याओं के अनुसार से, वो सारी की सारी समस्याएं शरीर की हैं या मन की हैं। और क्योंकि हम लोग अपने को शरीर ही मानते हैं और अपने को जो भी भारी पर्सनैलिटी वो ही मानते हैं, इसलिए वो सारी समस्याएं मेरी ही हैं। लेकिन जो लोग अपने को भगवान का दास मानते हैं, आत्म साक्षात्कार कर लिया जिन्होंने, जिन्हें मालूम है कि मैं तो इसके अंदर बैठा हूं और मुझे वापस भगवान के धाम वापस जाना है, तो उसके लिए उस शरीर की समस्याएं समस्या नहीं है। हो सकता है कि वो शरीर रहते हुए उन सब समस्याओं का क्या करे, उपाय ढूंढे, गृहस्थी संभाले, दुकान संभाले, हो सकता है बाहरी रूप से ये सारे कार्य करता हो, लेकिन वो उनसे लिप्त नहीं, उनके फलों से लिप्त नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार रियलाइज्ड है, आत्म साक्षात्कार जिसने किया हुआ है, भक्ति की उस अवस्था में है जहां पर वो केवल भगवान के चरणों को प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए संसार की कोई समस्या नहीं है। ऐसा व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। जैसे एक बच्चा है जिसको मालूम है मुझे बड़ा होकर क्या बनना है, मुझे कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, वो सुबह शाम मेहनत करता है, ट्यूशंस लगाता है, अच्छे से अच्छे मेहनत करता है, लक्ष्य क्लियर रहता है। ऐसे बच्चे के लिए भी क्रिकेट मैच हो रहा है बाहर, लेकिन उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो। ऐसे बच्चे के लिए भी कहीं कहीं के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उसको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बच्चे को भी पता चलता है कि हाँ कोई मार्केट में नई कार आई है, कोई नई बाइक आई है, नया कुछ हुआ है, लेकिन वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य क्लियर है। उसी तरह जिन भक्तों का जीवन का लक्ष्य क्लियर है कि यस आई वॉन्ट टू गो बैक टू गॉड हेड, मुझे भगवान के धाम जाना है, मुझे निरंतर सेवा में लगे रहना है, तो उस फोकस्ड व्यक्ति के लिए इस संसार की सारी समस्याएं नहीं है। तो हम लोगों को ऐसा स्टूडेंट बनना है। और जो इस प्रकार ज्ञान में स्थित रहता है, जिन्हें मालूम है लक्ष्य क्या है, तो उनके सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, क्योंकि धर्म तो जीता जागता वो धर्म ही है ना। भक्त क्यों धर्म कहलाता है, या भक्त धर्म का पालन करते करते धर्म हो जाता है? जैसे लोहे की छड़ को हम अग्नि में रख दें तो कुछ समय बाद अग्नि हो जाती है, तो धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति कुछ समय के बाद धर्म हो जाता है। अर्थात वो पूरा जीता जागता इंसाइक्लोपीडिया, मतलब पूरा धर्म का ग्रंथ है वो, सारे ग्रंथ सारे देवता उसके अंदर विश्राम कर रहे हैं, स्वयं गोविंद उसके हृदय में विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि चिंतन करता रहता है वो हमेशा। तो ऐसे व्यक्ति को सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या करूं, उसको मालूम है ऐसी परिस्थिति आएगी तो धर्म का पालन करना है। तो ऐसे लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। तो इस प्रकार फिर रंतिदेव बता रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, देवता बोल रहे हैं बताओ क्या चाहिए आपको, कहते नहीं मुझे तो अभी भी क्या चाहिए। जिस व्यक्ति को जार हृदय कृष्ण प्रेम करे उदय, तार क्रिया मुद्रा विघ्न बुझाए, जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम उदित हो चुका है, जो भगवान का भक्त है, जो जिसको टेस्ट डेवलप हो चुका है, जो फोकस्ड है, उसके लिए फिर संसार के सारे प्रलोभन सारी इच्छाएं नगण्य है, फिर उसे नहीं चाहिए, फिर वही चाहता है जिसमें उसको आनंद आता है। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए जो भी कंडीशन है, जिनके लिए शरीर, दुकान, मकान, आने वाली पुश्तैनी मकान, जिसके लिए सब कुछ है, हम लोग अभी इनसे बंधे हुए हैं, उसके लाभ से, उनकी इच्छाओं, तो वो हमें डिस्टर्ब करता है। तो हमें अर्जुन की भांति रहना यहां है, क्योंकि शरीर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन अर्जुन क्या करता था, भगवान ने कहा भैया मेरा स्मरण करो, बुद्धि भी मुझे दे दो और अपना कार्य करो। उसी प्रकार हम सबको कार्य करना है, सारे कार्य करने, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है, लेकिन चेतना कैसी रखनी है, पूरी की पूरी इस संसार मिलनी नहीं चाहिए, मिक्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि करते करते कहीं ना कहीं कंटामिनेशन बढ़ जाता है। जैसे भक्तों के संग से दूर जाते हैं, ग्रंथ अध्ययन छोड़ते हैं, हरिनाम से दूर होते हैं, तो फिर से मिट्टी जमना शुरू हो जाती है, और फिर छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी बड़ी लगती है। फिर लॉजिक देते हैं, प्रभु जी करना तो मुझे ही है ना, होना तो मेरे साथ ही है ना, पैसा तो मेरा ही था ना, दुकान तो मेरी थी ना, सील तो मेरी हुई है ना, सारी चीजें दिखाई देती हैं। और जिसको जो साथ में साक्षात्कार के स्तर पर है, उसके लिए सारी चीजें उसके लिए भी हैं, समस्याएं उसके लिए भी एग्जिस्ट करती हैं, बट वो सदैव हरि नाम में भगवान की भक्ति में रमन करता रहता है। मच्चिताह मदगद प्राण, डिस्कस करता है भगवान की चीजों को और आनंद देता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह भक्तों को रहना चाहिए, होना भी चाहिए। और यही ज्ञान और यही चीज हम लोगों को इस संसार में भी सुखी और शांत रखेगी जब तक रहना है, इसी की कृपा से, इसी ज्ञान की कृपा से। अन्यथा अगर आप इस ज्ञान को भूलते हैं, अज्ञान में ज्यादा दुख है, अज्ञानता में और दिक्कतें हैं,
हम ये नहीं कह रहे कि जो मकान आपका है उस मकान के पेपर हटा दो, फेंक दो, आग लगा दो, हम नहीं कहा ये। जो दुकान है कल जाना छोड़ दो या अपने काम धंधे ना करो, करने तो वो भी हैं, लेकिन कैसे? अनासक्त भाव से, ज्ञान से कि मैं तो यहां सिर्फ जिस मकान की, जिस दुकान की, जिस पैसे की मैं बात करूं, जिस अपने वंशों की मैं बात करता हूं, वो तो साथ में कोई जाएगा नहीं। हम तो टाइमिंग कुछ समय के लिए इकट्ठे हुए हैं, फिर छोड़ना एक दूसरे का साथ। देखो ना, हमारे पिताजी चले गए, हमारे दादाजी चले गए, हमारे परदादाजी चले गए, हमारी दादी चली गई, परदादी चली गई, कुछ पैसा मिला अचानक चला गया, कुछ प्रॉपर्टीज आई किसी और ने ले ली, कुछ ना कुछ हो रहा है जीवन में, ये होता रहेगा। ये इसलिए हो रहा है ताकि आपको बुलाया जा सके, आपको फोकस रहने में डिस्टर्ब करे, फिर आपको लगता नहीं सच्ची है ये चीज, तो ठीक कह रहे हो, होना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। तो जितना हम इस संसार की तरफ आकर्षित होते हैं, जितना यहां पर इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, हमें भुलाने का कोशिश करता है, और जितना हम भक्तों के संग में रहते हैं, ज्ञान अर्जन करके हम ज्ञान अर्जित करते हैं, उतना हम डिटैच होते जाते हैं, ठीक है? नहीं तो इस प्रकार रंती देव जी तैयार हैं, उनका एग्जाम हुआ, पास हो गए 100% मार्क्स। हम सबको टेस्ट आते हैं, रोज आते हैं, रोज आते हैं, हर परिस्थिति में आते हैं। तो चेक करो कि मैं उन सब आने वाली परिस्थितियों से कितना ज्यादा डिस्टर्ब हूं, दुखी हूं या खुश हूं। हम खाली दुख दुख की बात करते हैं, खुशी देने वाली चीजें भी बंधन का बहुत बड़ा कारण है। मान लीजिए अब दुख से अपने को बचा लिया, लेकिन जो सुख वाली चीजें आ रही हैं, प्रभु जी, हाँ जी, मेरे यहां पोता हो गया, प्रभु जी, मेरे बेटे की शादी हो गई, तो जो सुख वाली चीजें भी आ रही, प्रभु जी हमने नई गाड़ी ली, प्रभु जी आ जाओ, चक्कर लगवा दो जरा। तो जो सुखी वाले इवेंट्स भी आ रहे हैं, ये भी क्या है? ये दुख वाली चीजों से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सुख वाली चीज हमें कहती है यस, इस संसार में सुख है, कोई दिक्कत नहीं है, लगे रहो। सुख हमें कहता है लगे रहो, मतलब आते रहो, पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरण, कोई दिक्कत नहीं है। और दुख हमें क्या करता है? ठोकर मारता है, कहता है निकलो, कुछ नहीं यहां पे। तो हमारे जीवन में क्या ज्यादा लाभकारी है? जोर से बोलो, कुंती महारानी सुन रहे हैं आप, जोर से बोलो दुख ज्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं, हमारे जीवन में दुख तो खैर रियलाइज कराता है, लेकिन सुख जो है ज्यादा खतरनाक है हमारे जीवन में। इसलिए जो हम लोग यहां पर आके हाथ जोड़ते हैं और भगवान के आगे और क्या बोलते हैं, हमें क्या दे दो? सुख दे दो। तो इसलिए भगवान से मांगना चाहिए, क्या दे दो? आत्म साक्षात्कार, हमें भक्ति दे दो, ताकि ये जो सुख और दुख हैं हमें डिस्टर्ब ना करें। इसलिए इन दोनों से बचो, दोनों खतरनाक है। प्रभुपाद जी कहा करते थे, गीला मल और सूखा मल, बदबूदार, दोनों गंदी चीजें, दोनों का त्याग करो। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न या जिज्ञासा है किसी की? हाँ जी,
हरे कृष्णा भाई। जैसे आप शुरुआत में बता रहे थे कि हम दान देते हैं, तो अभी के लोग दान देते वक्त बहुत सोचते हैं किसको दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, लेकिन भगवद गीता के हिसाब से तो ये सही भी है, अगर बिना सोचे समझे दान देते हैं तो तमोगुण में आता है।
हाँ जी,
तो हमें सोचना तो चाहिए हम दान किसको दे रहे हैं।
हाँ, वो तो ठीक है,
तो कैसे समझें इसको?
उसको ऐसे ही समझ जैसे आप समझ रहे हो। दान के लिए पात्रता देखनी है, समय देखना है, सब कुछ देखना है। मैं मात्रा की बात कर रहा था। व्यक्ति आता है मंदिर में, अपना बटवा खोलता है, इतनी सारे नोटों की गड्डी होती है, उसमें सबसे छोटा नोट निकालता है, वो जो सरकार ने बंद कर दिया है वो ला डालता है। तो वो मेरा भाव होता है कहने का, ठीक है? हाँ जी,
आप बता रहे थे काउ प्रोडक्शन के ऊपर, तो एक भक्त समाज में भी देखा जाता है कि जैसे इस्कॉन है, इस्कॉन का अपना स्टैंड है काउ प्रोटेक्शन को लेके, तो एक साधक भक्त को कैसे देखना चाहिए, मतलब हमारे कि किस चीज पे फोकस करना चाहिए? जैसे प्रभुपाद जी का काउ प्रोटेक्शन पे काफ़ी कोर्स भी हैं, तो हमें क्या स्टैंड लेना चाहिए इस्कॉन के भक्तों, किस प्रकार से एक मतलब गौ रक्षा कर सकते हैं, या फिर और या भक्ति में बैलेंस बनाते हैं, मतलब जैसे ऐसा ना कि भक्ति को कम करके गौ रक्षा में ज़्यादा वो कर दिया, तो कैसे समझें?
देखिए, गाय की रक्षा भी जरूरी है, गाय का पालन भी जरूरी है। मैं राजस्थान गया था एक बारी जयपुर साइड में, तो वहाँ पर लोगों ने अपने घर के बाहर ही कम से कम 10 फीट का एरिया मिट्टी के साथ रखा हुआ है, और एक ही गाय पाली हुई है ना, और ये अच्छा तरीका है। अगर हमारे यहाँ पर भी अलाउड है तो आप लोग भी पाल सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों ने पाल रखी है वहाँ जाएं, उन गाय की सेवा करें, गाय से संबंधित जानकारी जुटाकर लोगों को जागृत करें और लोगों को उत्साहित करें कि गाय की सेवा करें। खुद इस्कॉन में रहते हुए हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर तो भी सिटीज़ में नहीं है जगह ऐसी चीज़ें करने की, लेकिन जितना हो सके जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाएं, वहाँ जाके सेवा करें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ये भी है, यहाँ पर लगे हुए हमारे प्रोडक्ट्स हैं, काओ के प्रोडक्ट्स यूज़ करें, दूसरों को भी प्रेरित करें कि वो लें, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में और भी इस्कॉन भी बड़े विचार कर रहे हैं इन सब चीज़ों में कि और कैसे कर सकते हैं, इसलिए हम कहीं ना कहीं जो बाहर जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको तो अप्रिशिएट करते ही हैं, उनके साथ जुड़े भी हुए हैं, और धीरे धीरे आगे आके इस्कॉन भी इसमें और आगे बढ़ेगा प्रभुपाद जी के निर्देशों के अनुसार। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। हरे कृष्णा, हाउ कैन वी एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ बाय फॉलो बाय क्या ही बाय फॉरवर्डिंग ऑन अच्छा बाय फॉलोइंग चैंटिंग रीडिंग एंड हियरिंग और बाय वर्किंग ऑन अवर अनर्थास वन बाय वन। अनर्थास पे एक एक काम करना यस जरूरी है। चैंटिंग जब हम शुरू करते हैं, रीडिंग करते हैं, हेयरिंग करते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, तो कई बार कुछ अनर्थास तो हमें पता चलते हैं हमारे कि ये भी अनर्थ है, ये भी अनर्थ है, काम है, क्रोध है, लोभ है, लेकिन उसकी डिटेल्स हमें नहीं पता होती कि हमने कहाँ गड़बड़ कर दी, कहाँ पर हम लोग, कुछ चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। कुछ लोग हमारे सीनियर भी इमीजिएटली जज कर लेते हैं कि अभी आप इस पर्टिकुलर अनर्थ से परेशान हो, इससे गुजर रहे हो, तो वो हमारी मदद करते हैं। तो जब हम क्लोज सुपरविजन में रहते हैं डिवोटीज के, तो हमें बड़ी अच्छी मदद करते हैं, वो बताते हैं कि आपका ये तंग चल रहा है, इसको ठीक करिए, इसको ठीक करिए, तो इस तरह से करना चाहिए। एक एक अनर्थ पर भी ध्यान दें कि जो मेरे को ज़्यादा परेशान करता है, दुख देता है, उसको मैं कैसे काबू करूं, उसके लिए शास्त्र में क्या कहा है, गाइडेंस लें, और फिर पूर्णतः जो चैंटिंग रीडिंग हेयरिंग है वो भगवान की शरण में जाने के लिए। और जैसा कहा गया कृष्ण एक शरणम, कि जैसे हम कृष्ण की होल हार्टेडली शरण लेते हैं तो अच्छे गुण तो आते ही आते हैं, तो इसका मतलब क्या है, बुरे चीज़ें जाती भी हैं। ठीक है कि नहीं? हमने देखा है कई लोग काफ़ी लंबे समय से आते हैं भक्त लोग, लेकिन कई बार भक्तों के मार्गदर्शन में नहीं रहते। अगर मार्गदर्शन में रहकर व्यक्ति सिंसियर है और पूछे कि प्रभु जी या जिनके भी शरण में हैं कि मुझे बताइए कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, या क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरी गलती क्या है, क्या बता सकते हैं कि मैं किन चीज़ों को ठीक करूं, ये बताने के लिए भी स्तर चाहिए, पूछने के लिए भी एक स्तर चाहिए। जनरली हम लोग चार जो 16 माला चार नियम करते हुए नज़र आते हैं भक्त लोग, तो कई बार डिस्कस करते हुए नहीं नज़र आते भक्तों के साथ, उनसे पूछना चाहिए, टाइम लेना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, ताकि वो हमारी मदद कर सके उन अनर्थों से ऊपर बाहर निकलने के लिए। लंबा समय हो जाता है, कई बार हम देखते हैं कई लोग अभी भी गलतियां कर रहे हैं, बहुत टाइम से आ रहे हैं, उनसे गलतियां हो रही हैं अभी भी, तो ये तभी ठीक होता है जब वो कहीं जाके पूछें किसी से। ठीक है, तो सारे अनर्थ वो आराम से बता देते हैं कि इनको कैसे ठीक किया जाए, तो हो जाता है। ठीक है, और कुछ तो नहीं है?
थैंक यू फॉर द वेरी वंडरफुल लेक्चर। आपने अभी एक उदाहरण दिया कि भक्तों का संग करना चाहिए, और इससे वी विल बी एबल टू डिफरेंशिएट कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अध्याय 6 भगवद गीता में जो ध्यान योग में वर्णन आता है कि ये स्टेजेस हैं अष्टांग योग की, जहाँ तक मैं एक लेक्चर से सुन सका था कि पहले 4 जो हैं वो यू कैन डू इवन एज अ गृहस्था, लेकिन प्रत्याहार से शुरुआत होती है डिटैचमेंट की। तो क्या हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी प्रत्याहार कर सकते हैं, या हाउ डू वी डिटैच आवरसेल्व्स एग्जैक्टली इन शॉर्ट, हाउ डू वी गो अहेड?
अपने को डिटैच करने के लिए डे टू डे लाइफ में गृहस्थ व्यक्ति के लिए भी मैंने जैसे बताया कि इस संसार में जो नॉलेज है वो तो सीधे है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन जब तक हम लोग इस शरीर के अंदर हैं तो हमारी आइडेंटिटी भी है कि हाँ जी मैं मिस्टर ये हूँ मिस्टर वो हूँ, लेकिन है तो आत्मा ही है, तो भगवान का दास ही। अब बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है कि जब मैं कार्य करता हूँ या जिन कार्यों के प्रति करने के बाद फल से आसक्त होता हूँ तो कहीं ना कहीं वो मेरे बंधन का कारण बनेगा। तो जब हम बात कर रहे हैं भक्तों के संग में रहें तो भक्त लोग हमारी बड़े अच्छे ढंग से मदद करते हैं कि आप यहाँ पर ज़्यादा आसक्त हो रहे हो, इसकी वजह से आपको ज़्यादा टेंशन हो रही है, ये चीज़ आपको और नुकसान कर रहा है, आपकी भक्ति छूट रही है, आप भक्तों के संग से दूर जा रहे हो, तो मदद करते हैं हमारे। फिर कुछ समय के बाद जब क्योंकि हम लोग हरि नाम ले रहे हैं, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं और भक्तों के संग में हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो धीरे धीरे सुनते 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 हमें जानकारी मिलती है, बढ़ती है और पता चलता है कि यस कहाँ कहाँ पर चीज़ें मुझे अटैचमेंट के कारण दुख दे रही हैं। और अटैचमेंट को देखिए किस तरह से डिटैच कैसे हो। तो एक दिन हम लोग एग्जाम्पल दे रहे थे कि एक घर में एक छोटा बच्चा है जो क्रिकेट का बड़ा शौकीन है, वो हर बॉल टू बॉल सारा मैच देखता है। पिताजी को कम शौक है, उनको मालूम है बचपन से देख रहा हूँ तो बहुत हो गया, कौन हारे कौन जीते मिलना सब कुछ विराट को है, मुझे कुछ देना नहीं उसने। तो थोड़ा सा वो कम रहता है कि बता कौन जीता कौन नहीं जीता, तो थोड़ा लगता है उसको इंडिया पाकिस्तान के मैच में। और घर में दादी भी बैठी है जो केवल वहाँ से कमरे से गालियाँ देती रहती है कि पढ़ ले दिमाग खराब है आगे बढ़ के क्या करेगा। तो एक ही मैच चल रहा है भारत पाकिस्तान का और घर के तीन सदस्यों पे अलग अलग ढंग से प्रभाव डाल रहा है। बच्चा बहुत ज़्यादा आसक्त है, रोता भी है, टीवी भी तोड़ देता है, खाना भी नहीं खाता हारने की वजह से। पिताजी कहते हैं ठीक है अब क्या कर सकते हैं, वो भी परेशान है लेकिन ज़्यादा नहीं है। और दादी तो बिल्कुल परेशान, वो उनकी परेशान देखकर ज़्यादा परेशान है कि तुम, लेकिन मैथ से उसको कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब दादी की तरह रहना चाहिए घर में जिसको मैथ से कुछ नहीं है। तो वो भी गृहस्थी है, गृहस्थी में ही है, फीमेल फॉर्म में है लेकिन है। तो लेकिन क्योंकि उसने इन्वेस्ट नहीं किया उस मैच में कुछ, तो इसलिए डिटैच है, तो वो आइटम उसको दुख नहीं दे रही। तो हम लोग भी जिन कामों को करते हैं, जिन जगहों पर रहते हैं, जो चीज़ें हमें दुख दे रही हैं कुछ करें, तो उससे अपनी अटैचमेंट निकाल लो। चीज़ें तो होती रहेंगी, मैच तो चलेगा, मैच तो खेलना ही है, लेकिन अपनी अटैचमेंट उसके लाभ से उसके फल से कम करो। ग्रंथ राज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर पे मानेंगे।